ओम शांति आज 9 अक्टूबर 2024 बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता उसके लिए युग बल चाहिए यह भी एक लॉ है प्रश्न है शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं उत्तर है बाबा कहते देखो कैसा वंडर है मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं मेरा कोई बाप नहीं मेरा कोई टीचर नहीं गुरु नहीं मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ खुद 84 के चक्र में नहीं आता लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ ओम शांति रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो आगे नहीं जानते थे अभी बाप द्वारा तुमने जाना है 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं बाबा नहीं बनते हैं फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया हमको तो अनुभव प्राप्त होता है बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना यह शिव बाबा कैसे पढ़ा इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं परंतु तुमको सब समझाते हैं यह भी कितना वंडर है ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नोंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं तो वंडरफुल टीचर हुआ ना वंडर खाना चाहिए ना इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं ईश्वर प्रभु अंतर्यामी आदि आदि तुम वंडर खाते हो ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं उनको तुम कोई बाप भी नहीं जिसे जन्म लिया हो वह समझा हो तुम सब भाई भाई हो वह एक कैसे तुम्हारा बाप है बीज रूप है कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ तुम लेते हो तो जरूर प्रश्न उठेगा ना बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा बाबा कहते हैं बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ इसलिए ही मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है खुद चक्र में नहीं आते परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से, बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता। एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं है ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का, यह ब्रह्मासु विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें, बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमसो का अर्थ कितना अच्छा है, इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हैं। यह पाठ बचाने आई है, यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता। बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहां अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड, जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाएगा सतयुग, तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी, पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में, मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा होना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है, वह तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सद्गतिदाता सद्गुरु भी बनता हूँ। सद्गति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है जो बाप समझाते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं, मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान उवाच, अभी तुम समझ गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतत से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतत से सतयुगी पावन बनाओ, फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा, सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया, अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो, तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से युग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम सालीग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वही नॉलेज फुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, किसी से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा, इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, यह होते ही है संगम पर पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने लिए फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे अभी रावण राज्य है ना राम राज्य में था सुख रावण राज्य में है दुख क्योंकि सब विकारी बन गए हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया बच्चे तुम इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना परंतु वहां है योग बल बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके लॉ नहीं कहता तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो कितनी ऊंची पढ़ाई है बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार है पहला कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है उन्हें भूल स्वयं को संगम योगी ब्राह्मण समझना है सच्ची गीता सुननी और सुनानी है दूसरा पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है बहुतों के कल्याण लिए मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं वरदान है बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भाव कहीं बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है मरना पड़ता है लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना इसमें अंतर है बातों के कारण सहन नहीं करते हो लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना इसकी ही मार्क्स है स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं ओम शांति